तो देखते हैं सूरतुल हलाल वल हराम। और ये सूरत हमें आज क्या सिखा रही है? पहले तो हम ये नियत करें कि जो ये सूरत हमें सिखाएगी, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए उन चीज़ों के ऊपर अमल करना आसान फरमा दे और हमें तौफीक दे कि हम इनको जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है उसी तरह हम इनको पूरा कर सकें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से सूरत शुरू होती है। अब ये जो कलमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब भी कहा जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला तुमसे बात कर रहा है, आपको स्पेसिफिकली अल्लाह ताला पुकार रहा है। समझ लो अल्लाह ताला ने आपको पुकारा है आपके नाम से, जैसे आपका जो भी नाम है, समझ लें आपके नाम से आपको किसने पुकारा है? अल्लाह ताला ने खुद पुकारा है। यानी जैसे आप समझ लें कि मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर ऑफिस में बैठे होते हैं, तो नर्स आके नाम लेती है, जो ही आपका नाम आता है आप फौरन खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि आप क्या बुलाने लगी है, मुझे क्या कहना चाहती है। अल्लाह ताला निदा दे रहा है ईमान वालों को, और हर ईमान वाले को, हर जमाने के, हर जेनरेशन के, हर एज के। अब आप ये सोचें मैं तो इतनी अच्छी ईमान वाली नहीं हूं, मेरे अंदर तो बड़ी कमियां हैं। चाहे आप कैसे भी ईमान के इतबार से हैं, मगर आपके लिए भी ये हुक्म है। और ये तमाम वो लोग जिन्होंने दायरा इस्लाम में कलमा पढ़ के जो दाखिल हो चुके हैं, उन सब के लिए ये अहकामात है। ठीक है, तो इसलिए ये समझ जाएं कि मुझे और आपको ये कहा जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो हमें कितना सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए। अच्छा, ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ना, इससे तीन सूरतें शुरू हुई हैं। एक ये सूरह शुरू हुई है, एक सूरह हुजरात शुरू हुई है, और एक सूरह मुमतहिना शुरू हुई है। ठीक है, तो ये तीन सूरतें शुरू हुई हैं और ये तकरीबन 89 टाइम्स कुरान पाक में आया है। 16 टाइम्स तो सूरह माईदा में ही आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप सोच लें, इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी दफा पुकारा गया ईमान वालों को। और जब भी ईमान वालों को ऐसे कह के पुकारा जाता है, कुछ हुक्म देना होता है या किसी चीज से रोकना होता है या कुछ करने को कहना होता है, यानी डूज या डोंट में से कोई चीज आ रही है, समझ लें आगे। ठीक है, अब 88 टाइम्स तो कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ही शुरू हुई है। एक सिर्फ आयत ऐसी है कि जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू बीच में आया, ये अब आप बताएंगे कि कौन सी आयत है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ढूंढिएगा इसको। तो अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद। औफू किससे है? वफा युवफी, यानी फुल, पूरा, कंप्लीट, कंप्लीटली वफा करो। किसको? उकूद, अकद से उकूद। और मैंने आपको बताया गिरा लगाना इसका माना होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी। और जब भी गिरा लगाई जाती है, दो चीजें होती हैं ना जिनमें गिरा लगाई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में भी दो फरीक होते हैं, जब वो कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनके दरमियान एक मुआहिदा तय होता है दोनों की रजामंदी से। तो इनको फुलफिल करो, और पूरा पूरा फुलफिल करो। मैंने आपको बताया ना कि कंप्लीटली, फुली इसका माना है औफू का। ये नहीं हम कह सकते जी मैंने 90% तो पूरा किया ही है ना, नहीं, 100% करना जरूरी है पूरा। अब कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे मालिक के साथ है, हमारे रब के साथ है। और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? हमने तो आज तक कोई साइन नहीं किए किसी किताब पे, किसी किसी इदारे में जाके कोई कोर्स नहीं लिया, तो हमने तो कुछ नहीं ऐसा साइन किया, तो फिर हमारा अल्लाह ताला के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? देखिए, कलमा जो है ना आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका अल्लाह ताला के साथ। ए अल्लाह, मैंने आपको इलाह मान लिया। इलाह मानने के बाद अब मैं वो तमाम काम करूंगी जिनका आप मुझे हुक्म देंगे। इलाह मान लेना एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लेना एक कॉन्ट्रैक्ट है कि उनकी तालीमात में मैं चलूंगी। अब इसके बाद कोई ये कहे कि मुझसे नहीं नमाज पढ़ी जाती, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। 5 वक्त पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, 2 दफा पढ़ लेती हूँ, 3 दफा पढ़ ले, रमजान के रोजे मेरे से बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया, क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप अल्लाह को इलाह मानते हैं, यानी उसका हर हुक्म आप मानेंगे। तो अब उसने अगर हुक्म दे दिया 5 दफा नमाज पढ़ने का, तो आपको 5 ही दफा पढ़नी है, समझ आई बात? तो ये एक, देखिए सारे मुआहदे जो होते हैं वो रिटन नहीं होते, वर्बल मुआहदे भी होते हैं और साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। इस जो कलमा आप पढ़ते हैं ना, जो शहादत जो आप गवाही देते हैं, ये साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपका अल्लाह ताला के साथ। आ गई बात? ऐसे नहीं है कि बस कह के और उसके बाद पता ही नहीं है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, को पता ही नहीं कि कहा क्या था, कह के घूमते फिर रहे हैं। आपने तो अपनी आजादी दे के और अब गुलामी को चूज कर लिया कि मैं उस रब की गुलाम हूं, वो मेरा इलाह है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है, वही इबादत के लायक है, मैं उसके आगे झुकी रहूंगी। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर लिए, समझ आई? तो ये एक आपने कलमा पढ़ के, इसके अलावा इससे पहले भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने अल्लाह ताला के साथ? जी हाँ, एहदे अलस्त, एहदे अलस्त आप कर चुके हैं अल्लाह ताला के साथ, जिसमें अल्लाह ताला ने पूछा था अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने सब ने एक जुबान होके कहा था हाँ अल्लाह आप हमारे रब हैं, और दुनिया में आके भूल गए। जिसको हम कहते हैं ना अपनी जुबान में, देखिए पहले वक्तों के अंदर कौन सा लोगों के पास ये कोई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर होते थे, कोई ये चीजें कहाँ होती थी, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, ऐसा कोई खास अंगूठे वर्गूठे लगाना भी कोई चीज नहीं होती थी, बस जुबान दे देते थे, कहते थे मैंने हमने जुबान दे दी है। तो वो जुबान देना क्या है? वो आप किसी के साथ एक मुआहदा कर रहे हैं, आप किसी को जुबान देते हैं को, तो मतलब है कि आपने एक वादा उसके साथ कर लिया कि मैं इसको फुलफिल करूंगा। और पहले वक्त के लोग जुबान देने को बहुत बड़ी चीज समझा करते थे, आज तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की भी कोई अहमियत नहीं। तो इसके अलावा अब आप देखें, एक तो ये अब आपका मुआहदा हो गया अल्लाह ताला के साथ, तो इसको फुलफिल करना है आपने। जब आपने कह दिया ना, किसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ उसके ऊपर नहीं है, अब मैं हम जाके अपने उन हमसायों को जो क्रिश्चियन है उनको कहने लगे तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ते, भाई तुम क्यों नहीं ये जकात देते, ये चीज चीजें हराम है, तुम क्यों नहीं ऐसे, तो हम नहीं उनको कह सकते क्योंकि उन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया हुआ। ये सिर्फ मुआहदा ईमान वालों तुमने किया है तो तुम इसको निभाओ, नंबर 2। दूसरा मुआहदा इंसानों के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें अवाम है, हुक्मरानों के साथ एक मुआहदा, हुक्मरान है वो अवाम के साथ एक मुआहदा करते हैं, अवाम आपस में करते हैं, कंपनियां एक दूसरे के साथ करती हैं, लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, उनके अंदर आप देखते हैं निकाह का भी मुआहदा होता है, उसको भी अकदे निकाह कहते हैं, बिजनेसिस के आपके मुआहदे होते हैं, फिर और कई तरह के मुआहदे होते हैं। आप देखिए जिंदगी के अंदर ये चीजें चलती हैं ना, आपने कोई घर किराए पे दिया, उसका एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें मुआहदे हैं। अब ये भी चाहे आपने रिटर्न फॉर्म में किए हुए, चाहे आपका एक साइलेंट मुआहदा, मिसाल के तौर पे आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं, आपने एक मुआहदा किया कि मैं फीस अदा करूंगी, ये नहीं फीस के बाद भाग जाए, ये एक खामोश मुआहदा है कि हाँ हम पे करेंगे। ठीक है, आप कोई आपके पास अपनी कोई चीज रखवाता है तो आप कहते हैं मैंने कोई रिटर्न तो नहीं मुआहदा किया कि मैं उसकी चीज का ख्याल रखूंगी, नहीं, उसने आपके पास चीज रखवाई है ना, तो एक साइलेंट उसकी आपके साथ एक कमिटमेंट है कि आप उसकी चीज का ख्याल करेंगे, समझ आ गई बात? तो ये जो कमिटमेंट्स हैं, इसी तरह ये छोटी छोटी हमारी ये बातें होती है ना, छोटी बातों से ही फिर बड़ी बातें भी होती हैं। मैं फलां टाइम पे आपके पास पहुंच जाऊंगी, मैं फलां टाइम पे आपसे मिलूंगी, मैं इस वक्त आपके साथ ये जो मामला है ये फलां वक्त में करूंगी, तो देखें ये भी एक तरह से एक आपने जो जुबान दे दी है किसी को या आपने किसी को कह दिया है, उसको पूरा करें अपनी बात को, बात समझ आ गई? अच्छा, तीसरा एक मुआहदा इंसान अपने आप के साथ भी करता है, और वो किस सूरत में? जब ये हम नजर मानते हैं ना, कि मैं मिसाल के तौर पे कहती हूँ कि अब से मैं जिसको कहती हूँ मन्नत मानती हूँ, हम ज्यादा वर्ड यूज मन्नत का करते हैं, मन्नत मानती हूँ कि मैं हर मंडे को रोजा रखा करूंगी। तो ये इंसान ने एक मुआहिदा कर लिया, इसी वजह से इनको तोड़ना जो होता है जब, तो वो ही जो कसम का कफारा है उसी तरह है। तो ये भी आप मुआहिदा करते हैं, तो ये तीसरी तरह का मुआहिदा। तो हर किस्म के जब मुआहिदे करें, अव्वल तो या तो सोच समझ के मन्नतें माना करें, जोश जज्बात में आके ना मान लिया करें, और अगर मान लिया तो फिर उसको पूरा किया कीजिए। तो औफू बिल उकूद, पहली चीज ही जो बताई गई वो आपने अपनी कमिटमेंट्स को निभाना है। अनलेस के इंसानी तौर पे इंसान से कोई ऐसी हो जाए, तो फिर उसके डिफरेंट और तरीके हैं कि किस तरह फिर आप उसको हैंडल करेंगे। लेकिन एक ये चीज होती है ना कि आप तो एक मजाक ही बन गया, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ करे कि किसी, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा भाई आप आए हमारी जो इदारे पे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह, तो उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह कह दिया तो इसका मतलब नहीं आपने आना, इंशाल्लाह का मतलब ये कि आना ही नहीं है। यानी ये हम लोगों का कितना मजाक बन चुका है कि एक इंशाल्लाह को भी हमने मजाक कर दिया, कि नियत कुछ नहीं होती, बस इंशाल्लाह ऐसे ही कह देते हैं। तो हमारी जुबानों को एतबार नहीं रहे, जबकि मुनाफिकीन की ये निशानी है कि जब वादा करता है तो उसको तोड़ता है। अच्छा अब आगे, अहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए कौन, बहीमा चौपाए यानी चार टांगों वाले जानवर। मगर चार टांगों वाले तो बहुत सारे जानवर, कुत्ता भी चार टांगों वाला, बिल्ली भी चार टांगों वाली, तो आगे बता दिया गया सारे चार टांगों वाले नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अल अनआम वो जो चौपाए की किस्म के हैं, बहीमा है लेकिन कैटल मवेशी, चौपाए नहीं सॉरी मवेशी की किस्म के। यानी अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि ये बकरी होगी, गाय वगैरह, ये सारे मवेशी की किस्म के जानवर हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। अच्छा तो ये हलाल कर दिए गए, मगर कुछ हैं इनमें से जिनको, जो हराम है जानवरों में से, जो हराम किए गए हैं जो चीजें, तो उनकी एक्सेप्शन इल्ला के बाद है। यानी वैसे तुम्हारे लिए सारे चौपाए जानवर हलाल हैं, मगर हाँ कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन किसकी है, इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय जिनको आपके, आपको तिलावत करके आपको बताया जाएगा, जो तुम पे तिलावत किए जाएंगे, तुम पर तिलावत किए जाएंगे मतलब क्या, जिनकी अभी तिलावत की जाएगी, जो अभी कुरान के अंदर आएंगे या आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया सूरह बकरा में आ चुका है, 173 में आप पढ़ चुके हैं, सूरह नमल 115 में आप देख सकते हैं, यही लिस्ट जो अब आयत 3 में इंशाअल्लाह ताला इस सूरत में आप देखेंगे। तो इस सूरत में आयत 3 में, अल बकरा 173 में और अन्नमल 115 में, इन्हीं चीजों का, एक ही चीजों का जिक्र है, वो सारी हराम है। इसी तरह और युतला अलैकुम क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बताई हमें चीजें कि ये हराम है, वो भी इनमें आती हैं। यानी वैसे तुम्हारे लिए हलाल कर दी अल्लाह ताला ने मवेशी, मगर कुछ चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम किया है, जिनकी लिस्ट अभी आपको बताई जाएगी, ये समझ लें बात। अब हदीस में कौन से आते हैं, हर दरिंदा जो चीरता फाड़ता है, अब आपको कोई पूछे चीता शेर क्या ये खा सकते हैं, नहीं वो दरिंदे की किस्म के हैं, भेड़िया इस किस्म के। इसी तरह जो जानवर जैसे परिंदों की किस्म के, जो अपनी यानी अपने पंजों से शिकार करते हैं, वो भी हैं जिनको हराम कर दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजों के तो नाम लेके बता दिए, कुछ की कैटेगरीज बता दी, अब उनमें जो भी फॉल करते हैं वो सारे हराम हो गए। अब ये हमारे ना खाने पीने से मुतालिक चीजें, इसलिए इनको गौर से सुनना जरूरी है। गैर मुहल मुहल सईदी व अंतुम हुरम, और कौन सी एक्सेप्शनल चीजें, एक वो जो आपको पर तिलावत की जाएंगी, नंबर टू गैर मुहल सईदी, ना हलाल करने वाले हो शिकार को इस हाल में कि तुम एहराम में हो, यानी क्या मतलब, ना बनो शिकार करने वाले हालते एहराम में, ने जब कह दिया गया ना कि हिलत लकुम बहीमतुल अनाम, जब कह दिया गया हलाल कर दिए तुम्हारे लिए सारे बहीमतुल अनाम, तो अब ये भी कोई सोच सकता है कि भाई, क्योंकि उन लोगों को ना आज तो आप नहीं करते, लेकिन उन लोगों की तो एक खाने पीने का जरिया, मुआश का जरिया ही शिकार था ना। वो दुकानों से जाके, कोई मीट शॉप्स तो होती नहीं थी जहां से ले आते थे, तो शिकार करके खाते थे गोश्त। तो एक महबूब मशगला भी था और एक सोर्स भी था खाने का गोश्त। तो अब ये ना समझना कि भाई हलाल कर दिए गए तो अब हालत हराम में भी शिकार करने चल पड़ो, वो स्टिल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है कि आप हालत हराम में आप नहीं शिकार कर सकते। और ये तो आप सबको पता है कि हराम की हालत में इंसान के ऊपर हराम, हराम एक कपड़े का नाम नहीं है कि आपने जो आदमियों ने दो वाइट चादरें पहन ली और औरतों ने खास ही किस्म का कोई अबाया सिलवा लिया, ये अहराम है मेरा। औरतों के लिए तो कोई खास कपड़ा अहराम नहीं होता, जो भी उन्होंने लिबास पहना हुआ है वही उनका अहराम है। मगर बात यह है कि हम समझते हैं कि वो कपड़े जो है ना उनको अहराम कहते हैं, हालांकि अहराम एक हालत है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाती हैं, यानी कुछ चीजें आपके ऊपर हराम हो जाती हैं, जिनमें से एक क्या है, शिकार करना। ठीक है, तो उस हालत में शिकार करना हराम हो गया। और इसका मतलब ये भी है, दूसरा मतलब, कि वह अन तुम हुरुम, और जबकि हो तुम हरम में। आपको पता है हरम की एक हदूद है, और उस हदूद के अंदर भी बहुत सारी चीजें हराम हो जाती हैं। वो जहां पे और चीजें हराम है, वहां पे एक शिकार करना भी हराम है, यानी आप शिकार नहीं कर सकते हदूद हरम में। अब हदूद हरम कहाँ है? एक तो है काबा, एक है मस्जिद हराम। मस्जिद हराम वो मस्जिद है, वो जो उसकी बाउंड्री आपने देखी है, वो पूरी मस्जिद को मस्जिद हराम कहते हैं, आगे उसका जिक्र भी आ रहा है। तीसरा उससे भी बड़ा दायरा है हरम का, और इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको हरम करार दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के हुक्म से। और उससे भी बड़ा दायरा जहां पे मीकात शुरू होती है, तो मीकात से हरम नहीं शुरू होता, जहां से आप एहराम बांधते हैं, फिर उसके बाद आप अंदर जाते हैं, यानी काफी आगे जाके फिर हरम शुरू होता है। आपने साइंस भी आजकल देखे होंगे, वहां पे लिखा होता है कि हदूदे हरम यहाँ से शुरू हो रही है। तो जब तुम हरम में हो तब भी तुम शिकार नहीं कर सकते, यानी अब तुम ये ना समझना कि हलाल हो गए तो अब कहीं पे भी हलाल शिकार शुरू कर दो, पकड़ने शुरू कर दो ऐसे जानवरों को। इन्ना अल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है फैसला करता है, यानी अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जिस चीज को चाहे हलाल करार दे, जिस चीज को चाहे हराम करार दे। कोई इस पे खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि ये क्यों, इसलिए क्योंकि आगे अभी हलाल हराम के अहकामात आएंगे, वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ये क्यों हराम है, ये क्यों हलाल है, फिर फलां चीज क्यों हराम, इसके पीछे क्या बात है। ठीक है, आप ये सवाल कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि इसके पीछे क्या हिकमत है, मगर एक बात हमेशा याद रखें, वो हिकमत वजह नहीं होनी चाहिए आपके रुकने की। अगर कोई चीज हराम है और आप कहते हैं मुझे हिकमत बताओ, हो सकता है कोई एक रीजन भी किसी के पास ना, किसी को कोई एक हिकमत भी ना बताओ। आज तो चलो साइंस है, आपको काफी चीजें मिल जाती हैं, वो जी इसका क्या ये नुकसान है, नहीं जी आज ये आपकी जिस्म के लिए ऐसे हैं, और लोग इसको बड़ा प्रमोट करते हैं, देखा नहीं, देखा जी हमारा इस्लाम भी ये कहता है, और देखो आज साइंस ने भी ये कह दिया है, और ये चीज कितनी मुजरे सेहत है, और पोर्क में देखो ये खराबियां हैं। कोई भी खराबी ना हो अगर पोर्क में, कुछ भी ना हो, बड़ा अच्छा है। अव्वल तो ऐसे कोई शरीयत ने अहकाम दिए नहीं है, याद रखें, कि जिसमें हमारे लिए कोई खैर है तो शरीफ ने उससे मना कर दिया, हमेशा वो वाले अहकाम दिए हैं जिसमें हमारे लिए कोई नुकसान है तो उससे मना किया गया। मगर ईमान वालों का, आज ईमान का हाल ये है कि वो पहले रीजन पूछते हैं कि बताएं हराम क्यों है, तब हम मानेंगे। ये नहीं होना चाहिए हमारे मानने की बेस। ठीक है, हमारे मानने की बेस क्या होनी चाहिए? अल्लाह ने हुक्म दे दिया, समय ना आता ना, यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ने पैदा किया, उसकी तखलीक है, इंसान भी और ये सारे जानवर भी, वो चाहे इनको हलाल करे, वो चाहे इनको हराम करे, जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। समझ आई बात? हिकमत पता चल गई है, कोई हर्ज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कोई मसला नहीं, मगर हिकमतों के पीछे ऐसे भागने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान पागल हुए पड़े कि हम कोई रीजन ढूंढे ताकि हम दूसरों को भी बताएं, देखा देखा हमारा तो कुरान ये कहता है, देखा चलो आप दूसरे को कन्विंस करने के लिए, हम बात करने के लिए एक पॉइंट ला सकते हैं, लेकिन याद रखें आपके दिल में कभी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो पता नहीं हमारे लिए कोई अच्छी चीज थी और क्यों हमारे लिए हराम हो गई। और ये सिर्फ खाने पीने में नहीं, हर चीज में याद रखें, इस असूल को याद रखें। अगर आपको अल्लाह ताला पर्दे का हुक्म देता है, अगर आपको अल्लाह ताला हलाल और हराम कमाई में से किसी चीज की कमाई को फरमा दिया कि ये हराम है, ये हाल हुलिया हराम है, ये ताल्लुकात हराम है, तो डोंट फाइंड रीजंस, इसकी जस्टिफिकेशन ना मांगे, इसकी हिकमतें ना पूछे, क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया और मेरे रब ने हुक्म दे दिया, मेरे मालिक ने फरमा दिया, तो अब मैं क्या क्या कह सकती हूँ कि नहीं मैंने नहीं करना, मुझे पता चले या ना चले, हो सकता है हमारी अकल ही इतनी हो या आज साइंस ने उन चीजों को एक्सप्लोर ही ना किया, क्या हम साइंस का इंतजार करते रहेंगे। इतने जमाने तक लोगों ने जिन्होंने इस्लाम के ऊपर चल के दिखाया, उनके पास कोई साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने माना ना। आज हम क्यों ढूंढते हैं साइंस को मानने के लिए, क्यों हम इसको रीजन बनाते हैं, इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर है। क्या हमारे ये ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला के पास राइट है कि वो जिस चीज को मर्जी चाहे शरीयत में हलाल और हराम करे। अगर आपने रीजंस की बेस पे ही मानना है तो वो तो बहन कोई भी मान लेगा, कोई भी मान लेगा। अब शराब के हुरमत के रीजंस आपको अगर 10,000 बता दिए गए, ड्रग्स के 10,000 बता दिए गए, भाई ये रीजन है इसकी वजह से ये हमारे लिए इतनी खराब चीज है, तो वो कोई गैर मुस्लिम को भी बताते हैं तो वो भी मान लेता है, तो आपका क्या कमाल हुआ। आप तो ईमान वाले हैं, ईमान का मतलब ही ये है, गैब पे ईमान। क्या पढ़ा था, सूरह बकरा शुरू ही हुई थी, कुरान को शुरू ही किया था, तो क्या पढ़ा था, गैब पे ईमान, मुझे पता है या नहीं है ये चीजें मेरे से, अगर गैब है, ये आज पता ही नहीं चली, इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर भी मैं मानती हूं क्योंकि मैं ईमान वाली हूं और मुझे वो हर चीज माननी है जो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दे दी है। ओबीडियंस का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह के साथ है कलमा पढ़ने के बाद, अब इसके बाद चूं चरा कहां की, नहीं ऐसे नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, नहीं क्या करें, नहीं ये वो, कितनी तरह की हमने चीजें बातें बनाई हैं। आपने तो ओबीडियंस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, कमिट किया हुआ अल्लाह ताला के साथ, तो अब हमने क्यों मानने हैं अल्लाह के हुक्म। सूरह शुरू हो रही है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आएंगे, तो क्यों मानने हैं बताएं, ये असल में हमारे लिए बहुत सेहत के लिए अच्छा है, ये असल में आजकल इसका ट्रेंड बहुत है, ये असल में हेल्दी बहुत है, नहीं ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है ना, ये पल्ले बांध लेनी है बात। और दूसरा, हमें इस आयत से क्या पता चला कि बाज दफा हमारे यहाँ ये बहुत, आज खास तौर पे वो जो वेजिटेरियंस हैं वो बहुत इस चीज का प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी दी देखो ये बड़ा जुल्म है, जानवरों को आप कुर्बान करते हैं, किसी की जान ले लेना सिर्फ खाने के लिए, ये तो सही नहीं है, तो वीगन हो जाएं, बस वेजिटेबल्स खाया करें, जानवर खाना ही नहीं चाहिए। तो जिस चीज को अल्लाह चाहे हलाल करे, और यहां पर इस आयत से हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को हलाल किया है, ये कोई जुल्म नहीं है कि अगर आप इनको खा रहे हैं तो इसके अंदर कोई गिल्टी होने की जरूरत नहीं है कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, कोई ज्यादती का काम कर रहे हैं, इसीलिए तो हम इसके ऊपर अल्लाह का नाम लेकर इनको जिबा करते हैं। जानते हैं क्यों, क्योंकि किसी की जान लेना हमारे लिए जायज नहीं है, लेकिन जब हम अल्लाह ताला का नाम लेके उसको जिबा कर रहे होते हैं तो मतलब क्या होता है कि हम अब इसके अंदर अल्लाह ताला को याद करके कि उसकी इजाजत से, उसकी परमिशन से मैं इस जानवर की जान ले रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है उसी के नाम पे, जिसकी ये मखलूक है, जिसने पैदा किया है इसको और मुझे भी। तो मैं आई बात, अच्छा अब आते हैं, देखते हैं, अब वो जो आ गया ना इल्ला मा युतला अलैकुम, चले अब उसकी लिस्ट आने लगी है। अब उसका पता चलेगा हमें कि इल्ला मा यतला अलैकुम क्या है, सिवाय उसके जो कि आपके ऊपर पढ़ दिए जाएंगे। या अय्युहल्लदीना आमनु, अब देखें दोबारा आया है ईमान वालों। कौन कौन है ईमान वाला? सब सुन रहे हैं ना ईमान वाले, एकदम अलर्ट हो जाएं। अब कुछ मुझे बताया जा रहा है, सम डूज और सम डोंट। करना है कुछ करने को कहा जाएगा या कुछ से मना करने के लिए कहा जाएगा। अब यहां पे क्या है, पिछली दफा में क्या आया था, डू औफू बिलौकूद, यहां पे क्या है ला ला और आगे ता आ जाए, मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब है फेले नहीं है, यानी कुछ चीज से मना किया जा रहा है। ला तो हिल्लू, ना तुम हलाल करो। क्या ना हलाल करें, शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर को, शायर शायरा की मैंने आपको बताया कि जमा है। शायरा कहते हैं निशानी को, साइन को, जिसको कहते हैं ना हम ट्रेडमार्क, जैसे कि हर समझ लें कि हर मुल्क का, हर कौम का कोई, उनका कोई निशान होता है, कोई सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मुल्कों के झंडे होते हैं, उनके गाड़ियों की नंबर प्लेट्स होती हैं, उनका तराना होता है, और इस तरह की चीजें उनकी होती ना, उनकी कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो उनकी खास सिंबल्स हैं। अब किसी ने जब देखा है आपने कि जब उन्होंने एहतजाज वगैरह करना होता है लोगों ने, तो वो उस मुल्क को इंसल्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके शायर में से कोई चीज लेके उसको जलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है ना, यानी उसकी एक तरह से बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो कुछ शख्सियात, मसलन उनके कोई प्रेसिडेंट या उनकी कोई इमारतें, उनके कोई मॉन्यूमेंट्स, जैसे हमारे मुल्क के अंदर है मीनारे पाकिस्तान है मसलन, अब वो एक शायरा है, साइन है उस कंट्री का। ठीक है, तो इसी तरह जगहें भी होती हैं, चीजें भी होती हैं। तो इस्लाम की भी कुछ शायर हैं, यानी जिनको शायर अल्लाह कहा गया, सिंबल्स हैं जिनको देख के इस्लाम की पहचान होती है, जिनको देख के इस्लाम याद आ जाता है, जिनको देख के अल्लाह याद आ जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे वो ऐसी चीजें हैं कि अगर वो सामने आए तो पता चलता है कि ये अल्लाह पर ईमान का इजहार कर रही है, ये चीज है ना, अल्लाह की इसको निशानी समझ लें। तो ये मैंने आपको जैसे बताया, जगह भी हो सकती हैं, ये कुछ आमाल भी हो सकते हैं, और कुछ चीजों का जिक्र आपको आगे पता चल रहा है। नंबर वन शहरुल हराम, हदी कलाइद, नंबर फोर आमीन अल बैत अल हराम, ये चार चीजों का तो यहां पे पता चल गया। इसके अलावा भी बहुत से शायर अल्लाह, मसलन है काबा, काबे का एहतराम है। ला तहल्लु का मतलब क्या, ना तुम हलाल करो, मतलब क्या, यानी इसकी बेहुर्मती को अपने लिए हलाल ना समझो, इसको, इसकी हुर्मत है, इसकी ताजीम है, इसकी इज्जत करो शायर अल्लाह की। ठीक है, इनको रिस्पेक्ट दो क्योंकि ये अल्लाह की शायर है, अल्लाह ताला याद आ जाता है। आप देखें, आप सफा मरवा देखते हैं, आप टीवी पे ही काबा देखते हैं, मस्जिद नबी देखते हैं, आपको क्या याद आता है, आप मकाम इब्राहिम देखते हैं, आप कहीं पे भी मस्जिद देखते हैं, आप किसी को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, रमजान आता है, क्या याद आता है आपको, ये शायर अल्लाह है, इनकी रिस्पेक्ट है। कुछ टाइमिंग्स ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं, ये सारे शायर अल्लाह। कुरान को देख के क्या आता है याद, अल्लाह याद आता है, इसकी ताजीम है। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज शायर अल्लाह है तो उसकी ताजीम हमारे पर जरूरी है, अगर आप ईमान वाले हो तो आपके पर जरूरी है, ये सिंबल है अल्लाह के, समझ आई। अब हम देखते हैं कि हमारा शायर अल्लाह के साथ क्या रवैया होता है। हम शायर अल्लाह को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी शादी के मौके पे देखें, एक आदमी उठ के अजान देने लगता है तो लोग क्या करते हैं, इस मुल्ला को देखो, हंसने लग जाते हैं। किसी को हिजाब में देखते हैं तो कहते हैं, तुम कब से मुल्लानी बन गई हो, ये क्या है। आप लोग मजाक में कहते हैं मुसल्ली मुसल्ली, उसको ना एक डिग्रेडिंग वो समझा जाता है, मुसल्ली यानी एक जैसे एक बहुत ही लो ग्रेड किसी को नाम देना। हालांकि आपको पता है मुसल्ली कौन होता है? ये जब सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मुसलमानों को कहते थे मुसल्ली मतलब नमाजी, तो आज ये एक गाली के तौर पे या एक बुरी बुरे उसके लकब के तौर पे किसी को कहा जाता है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इस तरह की बातें करके क्या किस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है? शायर अल्लाह का, ये शायर अल्लाह का मजाक है। क्योंकि जब हमारी साइट में इन चीजों की अहमियत नहीं है ना, तो फिर हम मजाक उड़ाने लगते हैं। असल में इनकी रिस्पेक्ट अल्लाह की रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये किसका हुक्म है? अगर किसी ने हिजाब लिया हुआ है या किसी की दाढ़ी है, बाज लोग दाढ़ी को देख के बहुत हंसते हैं और उसको जोकर सा कहते हैं, बाज लोग टखनों से ऊपर किसी ने अगर अपनी शलवार की हो तो उसके ऊपर बड़ा मजाक उड़ाते हैं, तो ये किसके हुक्म है? उसने खुद तो नहीं किया, ये तो उसने अल्लाह की बात मानी है ना, इसके ऊपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी इन चीजों की। लेकिन आपने उन्हीं चीजों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई क्लीन शेव आता उसको तो नहीं हम मजाक करते, दाढ़ी का ही क्यों? एक मुल्क के वजीर आजम ने कहा था नकाब में औरतों को देख के कि ये तो डाकू लगती हैं, और दुनिया को अल्लाह ने नकाब में कर दिया। आप देखें नकाब के मजाक उड़ाने, तो ये छोटी बातें नहीं है, इनको हम मामूली समझते हैं और जस्ट फन समझते हैं। आगे आएगा आप कुरान में पढ़ेंगे, क्या अल्लाह और उसका रसूल ही रह गया तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए? वो कहते हैं हम बस मजाक कर रहे थे, हम तो बस दिल लगी कर रहे थे। क्या अल्लाह और उसका रसूल ही रह गए दिल लगी करने के लिए, मजाक करने के लिए? तो ये बातें मजाक की नहीं होती। समूद की आपको कहानी पता होगी, क्यों हलाक हुए? फाअखर उन्नाका, उन्होंने ऊंटनी की कूंचे काट दी थी। तो क्या ऊंटनी की कूंचे काटना इतनी बड़ी बात हो गई? क्या इतनी इंपॉर्टेंट थी वो ऊंटनी? हाँ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको क्या फरमाया, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की ऊंटनी यानी अल्लाह के शायर में से थी वो, अल्लाह की निशानी थी वो। इसलिए जब उसको काटा गया तो उस कौम के ऊपर अजाब आ गया। तो ये छोटी बात नहीं है, इस तरह मस्जिदों का एहतराम है, मस्जिदों की इज्जत करना। क्यों? ये शायर अल्लाह में से है। कोई आपको कुछ भी ना कहे, कहीं उन्होंने साइन ना लिख के लगाए हो कि जी आप बाथरूम को साफ करके निकलिएगा, आप टिश्यू ना फेंकिएगा, आप जरा तमीज से यहाँ पे रहिएगा, किसी ने भी ना लगाया हो, ना कोई कैमरे लगे हो, तब भी हमें क्यों ये करना है? इसलिए कि ये शायर अल्लाह है। समझ आई बात? तो जरा गिने शायर अल्लाह कौन कौन से हैं, और फिर जरा देखें कि हमारे दिलों में उनकी क्या इज्जत है। आपको पता है कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शायर अल्लाह की ताजीम करता है तो ये दिल के तकवा की निशानी है। तब पता चलेगा आपके अंदर कितना तकवा है। लोगों के देखने पे, कैमरों के होने पे, किसी के कहने पे शायर अल्लाह की ताजीम करना, ये क्या ताजीम हुई? वहां तो ये है कि हमारे दिल में इन चीजों की इज्जत हो। कुछ लोग कुरान पाक को ही लेकर पैरों में रख देते हैं, जमीन पे पड़े होते हैं। क्यों? क्या आपको पता नहीं ये शायर अल्लाह में से है? तो ये बात छोटी बात नहीं है। और ये सूरत कौन सी है जो आखिर में उतरी है? हतमी, ये फाइनल ये अहकामात हैं। गौर से इन बातों को समझिएगा। अब आपने बनानी है एक लिस्ट शायर अल्लाह की, जितनी भी लंबी बना सकते हैं बनाइए, और फिर देखिए कि इनका एहतराम कैसे करना। कौन कौन सी चीजें शायर अल्लाह हो सकती है? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं, बाकी आप खुद बनाएं। और जिनका मजाक उड़ाया जाता है और इससे बाज रहना है हमें। अब आगे मैंने आपको कहा कुछ शायर अल्लाह का अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया, वला शहर अल हराम, जैसे कि और ना शहर हराम की तो तुम हलाल करो, यानी शहर अल हराम कौन से थे? जो हुरमत वाले महीने, हुरमत वाले महीने वो होते थे जिनमें अरब लोग इस कदर एहतमाम करते थे कि वो किसी को भी नुकसान नहीं देते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, जंगे नहीं करते थे, लूट मार नहीं करते थे इन महीनों के अंदर, इनको यानी बड़ी इज्जत देते थे वो। कत्लो गारत गिरी इसमें बंद हो जाती थी, इसी वजह से लोग इन महीनों के अंदर ट्रेवल करते थे, रजब में उम्रे के लिए निकलते थे। जी कादा है वो हज की तैयारी का महीना है, उसमें लोग जाहिर है दूर दूर से आना होता था तो हज के लिए निकल पड़ते थे, जिलहज्जा में हज होता था, फिर मुहर्रम है उसमें वापस जा रहे होते थे। तो ये सारे मुहर्रम को तो कहा भी गया ये अल्लाह का महीना है, तो ये सारे महीने हुरमत वाले हैं, इनकी भी इज्जत को खराब ना करो, यानी इनके अंदर कोई लड़ाई झगड़े फसाद वाली चीजें मत करो। अब जाहिर है अगर कोई जंग वगैरह है, अब तो इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, इसकी पाबंदी उठ गई भी है, लेकिन गुनाह के कामों से परहेज करना चाहिए बाकी दिनों में भी, मगर खास तौर पे इन महीनों में, इसलिए कि इन महीनों की रिस्पेक्ट है, ठीक है, ये स्पेशल टाइम्स हैं, समझ ली। वलल हदिया, और ना हदी को हलाल करो, यानी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हदी क्या है? कुर्बानी के जानवर जिनको असाइन किया गया हो कुर्बानी के लिए। अब उस जमाने के अंदर मक्का में कोई बहुत बड़ी जानवरों की सप्लाई नहीं होती थी कि लोग अपने जानवर वहां से खरीद लें, जैसे आज होता है, लोग अपने साथ जानवर लाते थे, ठीक है, तो उनको भी किसी तरह का भी तंग करना, किसी तरह की भी उनको तकलीफ पहुंचाना, ये नहीं, ये क्यों? इसलिए कि ये डेडिकेटेड हो गए अल्लाह के लिए, समझ आई बात? तो इनको यानी उस जानवर की भी, इवन बताया गया कि उसकी भी एक इज्जत है, उस जानवर का भी एक एहतराम है, क्यों? इसलिए क्योंकि ये अल्लाह ताला की खातिर एक यानी ले जाया जा रहा है। वलल कलाइद, और ना ही पटे वालों को, कलादे की जमा, और ये गले के अंदर ना वो निशानियां डाल देते थे, ऐसी निशानी कि मतलब आप देखें कि आज भी आप बार दफा देखते हैं कुर्बानी के जानवरों के गलों के अंदर कुछ हार वार डाले होते हैं, कुछ जूती भी डाल देते हैं, उस जमाने में भी ऐसे होता था। तो वो किस चीज की निशानी होती थी कि ये जानवर कुर्बानी का जानवर है, तो उन पटों की भी हुरमत है, इसलिए कि उनसे पता चलता है ना कि ये कुर्बानी के जानवर है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ऐसे मिसाल देती हूँ, जैसे मस्जिद की तो हुरमत है ही, लेकिन मस्जिद का पता कैसे चलता है? वो मीनारे से पता चलता है, तो उस मीनारे की भी इसलिए हुरमत है क्योंकि ये मस्जिद का एक साइन है जिससे पता चलता है ये मस्जिद है। तो ये हदी के जानवर तो हैं ही जिनकी हुरमत है, वो कलाइद जो हैं, जो गले में डाले हुए पटे हैं, पटे वालों की भी एक इज्जत है, यानी अब आप इन जानवरों को पहले से नहीं जिबा कर सकते, वो उनको हरम में ले जाना होगा, इनको तंग नहीं कर सकते, इनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, इनको कोई लूट मार के लेके नहीं जा सकता। वला आमीन अल बैत अल हराम, और इरादा करने वालों को बैतुल हराम का, और वो कौन होते हैं जो इरादा करने वाले हैं बैतुल हराम का? यानी जो हज या उमरा करने वाले हैं, मुहरिम जो है एहराम की हालत में, यानी जो हाजी निकला है या उमरा करने वाला निकला है, वो भी क्या है? वो भी शायर अल्लाह में इसे करार दिया है अल्लाह ताला ने, क्योंकि जब आप किसी को एहराम में देखते हैं तो क्या होता है, आपको देखते ही एकदम इतना अच्छा सा लगता है, वो हज उमरा याद आ जाता है, और आपको बहुत, आप एक उस चीज में खो जाते हैं, है ना? तो वो एक निशानी किस चीज की है? अल्लाह की निशानी है, शायर अल्लाह में से है, यानी जिन चीजों को भी आपको देख के अल्लाह याद आ जाए वो शायर अल्लाह है। तो ऐसे लोग भी उनमें शामिल हैं जो ये हज या उमरा करने के लिए निकलते हैं, उसका कसद करने वाले। आमीन का मतलब क्या? ये आमीन नहीं है जो आमीन आप सूरह फातिहा के बाद या दुआ के बाद कहते हैं, ये आमीन है हमजा मीम मीम से, मतलब करना होता है इरादा करना, जैसे इमाम भी इसी से लोग इमाम का इरादा करते हैं ना, इमाम की तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, जो वो उसको फॉलो करते हैं। ऐसे लोग जो बैतुल हराम का इरादा करें, उनको भी किसी तरह की भी तकलीफ देना, हज पे जाने वाले लोगों को, बाज दफा उनको को पैकेज कुछ दिया है और कुछ और निकलता है, उनको तंग किया जाता है, वहां पे जो इंचार्ज जो उनको टूर वाले लेके गए होते हैं वो बाज दफा को फ्रॉड करते हैं उनके साथ, या वहां पे उनको वो चीजें नहीं देते जो उनका वादा किया गया था, कई लोग उनकी जेबें काट लेते हैं हाजियों वगैरह की, मैंने कई तरह की चीजें हैं ना, कोई उनको वहां पे झगड़े उनके साथ शुरू कर देते हैं। तो जो भी इस जगह का इरादा भी करें, उसकी भी एक हुर्मत है। हुर्मत का मतलब क्या? उसकी एक रिस्पेक्ट है, ऑनर है उसका, उसको मत छेड़ो। तो वो हुकूमतें या लोग जो जिनके पास से ये जिनका ये सारा काम है इस चीज को देखने का, हज या उमरे का, उनको इस चीज में बहुत एहतियात करनी चाहिए कि ये शाइर अल्लाह में से, उनको तकलीफ ना हो किसी तरह, क्योंकि ये दो दो दुयूफ रहमान है ना, रहमान के मेहमान होते हैं ये, तो रहमान के मेहमानों को तंग करना तो ये वैसे ही सही नहीं है।